ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिपक्षी दलों के विरोध के कारण प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक अवरुद्ध। नेपाल भारत सीमा समस्या कूटनीतिक वार्ता से समाधान ढूंढने का काम सरकार कर रही है। सरकार के प्रवक्ता शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल का कथन, नेपाल भारत सीमा के विषय पर किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा स्पष्ट। भारत भ्रमण पर रहे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा सभापति रवि मिछा ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीच भेंटवार्ता। और रूस ने यूक्रेन पर किया हवाई हमला, कम से कम 16 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिपक्षी दलों के विरोध के बाद प्रतिनिधि सभा की बैठक जेठ 25 गत्ते तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक शुरू होते ही प्रतिपक्षी दलों के सांसदों ने खड़े होकर विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा नेपाल ने भारत की सीमा का उल्लंघन किया है, इस प्रकार दिए गए बयानों को वापस लेने की मांग की। इसके बाद सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने कहा कि संसद के पिछले बैठकों और अनौपचारिक चर्चा में भी विपक्षी की ओर से अपनी बातें रखी जा चुकी हैं और इस पर उनका ध्यान भी गया है, इसलिए सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया गया। सभामुख के आग्रह के बावजूद विरोध जारी रहने पर उन्होंने विपक्षी सांसदों को क्रमशः बोलने का समय दिया। इसके बाद भी विरोध जारी रहने पर सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने प्रमुख विपक्षी दलों के नेता भीष्मराज आदम्बे को बोलने का समय दिया, लेकिन उन्होंने समय नहीं लिया। इसके बाद राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण संबंधी पत्र पढ़ा गया और बैठक स्थगित कर दी गई। राष्ट्रीय सभा के सांसदों ने रविवार को प्रतिनिधि सभा में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा भारत के साथ बहुआयामी संबंधों के विपरीत दिए गए बयानों को जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने देंगे का अड़ान लिया, जिसके कारण बैठक स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होते ही आकस्मिक समय में सांसदों ने कहा कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारत की भूमि का अतिक्रमण किया है, जैसे कथन देश के कार्यकारी प्रमुख द्वारा संसद के रोस्ट्रम से कहना कूटनीतिक मर्यादा के विपरीत है। उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री को तुरंत सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल जेठ 20 गते बुधवार दोपहर 12:15 पर होगी। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा कि नेपाल भारत सीमा समस्या का समाधान कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से खोजने के लिए सरकार काम कर रही है। आज सिंहदरबार में मंत्रिपरिषद के निर्णय सार्वजनिक करते समय प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा समय संसद में दिए गए बयान पर पत्रकारों के एक प्रश्न के जवाब में मंत्री पोखरेल ने कहा कि सीमा विवाद का समाधान बातचीत के जरिए ही होना चाहिए, जिस पर प्रधानमंत्री शाह ने भी जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न समय पर सीमा अध्ययन से जुड़े तंत्रों की रिपोर्टों में यह देखा गया है कि नेपाल का कुछ भूभाग भारत द्वारा उपयोग किया गया है और हो सकता है भारत का कुछ भूभाग नेपाल द्वारा उपयोग किया गया हो सकता है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने संसद में केवल यह बात रखी थी कि वे इन निष्कर्षों को देखकर स्वयं आश्चर्यचकित हुए। मंत्री पोखरेल ने बताया कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के प्रबंधन को न्यूनीकरण से संबंधित मटेरियल प्रोटेक्शन के कार्यान्वयन संबंधी समझौते को स्वीकृति दी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मंत्रिपरिषद की बैठक में सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री अंजनी कुमार पोखरेल को सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया है। मंत्री पोखरेल ने यह भी बताया कि भूमि समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष पद पर बलभद्र बास्तोला तथा सदस्य पद पर अमीर प्रसाद नेउपा ने पद्मिनी सोती और डॉक्टर रेहना श्रेष्ठ की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2082 साल भाद्र 23 और 24 गते के प्रदर्शनों के दौरान हुई घटनाओं के जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित सुरक्षा संयंत्र के संबंध में अध्ययन कर सिफारिश देने वाली समिति का कार्यकाल 45 दिन बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद को स्थापित द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से ही हल किया जाएगा। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन में जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच सीमांकन का कार्य लगभग 98% पूरा हो चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय की ओर से सीमा मुद्दे पर हाल में ही की गई टिप्पणियों के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि नेपाल भारत सीमा मामला पूरी तरह द्विपक्षीय विषय है, इसलिए इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि नेपाल और भारत के बीच जनता के लेकर राजनीतिक दलों तक गहरे और पुराने संबंध है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। भारत दौरे पर रहे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति रवि लामिछाने और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बीच मुलाकात हुई है। आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई इस बैठक में लोकतांत्रिक भागीदारी, सार्वजनिक विमर्श तथा भावी नेतृत्व निर्माण में युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए अध्यक्ष नवीन ने साझा सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक संबंधों तथा लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर आधारित नेपाल भारत के घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भाजपा की यात्रा, विचारधारा, संगठनात्मक संरचना तथा जनकेंद्रित राजनीतिक भागीदारी के दृष्टिकोण के बारे में भी जानकारी दी। इसी प्रकार रासपा सभापति रवि लामिछाने और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच भी आज मुलाकात हुई, जिसमें नेपाल भारत विकास साझेदारी तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि नई दिल्ली में रासपा अध्यक्ष लामिछाने और उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करते हुए उन्हें प्रसन्नता हुई। सभापति लामिछाने के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल भाजपा के निमंत्रण पर 5 दिवसीय भारत दौरे के लिए सोमवार को नई दिल्ली पहुंचा था। अदालत के आदेश फैसले को यथाशीघ्र कार्यान्वयन करने के विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता पर संबंधित पक्षों ने जोर दिया है। सर्वोच्च अदालत के फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय द्वारा आज आयोजित चर्चा में वक्ताओं ने कहा कि अदालत ने आदेश और फैसले का तत्काल कार्यान्वयन होना चाहिए। सर्वोच्च अदालत के रजिस्ट्रार मान बहादुर कार्की ने कहा कि फैसले के कार्यान्वयन में संबंधित निकायों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्देशनालय के महानिदेशक गजेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अदालत द्वारा फैसला सुनाते ही संबंधित निकायों को पत्राचार किया जाता है, लेकिन उसे तुरंत लागू करने की परंपरा अभी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई है। दरबार हत्याकांड को हुए 25 वर्ष पूरा हो गए हैं। वर्ष 2058 साल जेठ 19 गते नारायणहिटी राज दरबार के अंदर ही हुए दरबार हत्याकांड में तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह के परिवार की हत्या कर दी गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में कुछ यूक्रेन में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 11 लोग निप्रो शहर में और 5 लोग राजधानी कीव में मारे गए हैं। मारे गए लोगों में दो बच्चे भी शामिल है। यह हमला हाल के महीनों में रूस की ओर से किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। रात भर चले हवाई हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई बच्चों समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। कीव में मलबे के नीचे लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच राहत और बचाव दल उन्हें तलाशने में जुटे रहे। मंगलवार तड़के यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये हमले यूक्रेन की पिछली कार्रवाइयों के जवाब में किए गए थे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमले के सभी लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। रूस ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि वह व्यवस्थित हमले करेगा। रूस ने आरोप लगाया था कि कीव ने पूर्वी यूक्रेन के उसके कब्जे वाले हिस्से में एक छात्रावास पर घातक हमला किया था। यूक्रेन का कहना था कि उसे रूस की एक सैन्य इकाई को निशाना बनाया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार रात अपने वीडियो संदेश में चेतावनी दी थी कि बड़ा हमला हो सकता है। मंगलवार सुबह जेलेंस्की ने कहा कि रात भर चले हमले में रूस ने 656 स्ट्राइक ड्रोन और 73 मिसाइलें दागी। इनमें बैलिस्टिक क्रूज और 80 मिसाइलें शामिल थीं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिपक्षी दलों के विरोध के कारण प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक अवरुद्ध। नेपाल भारत सीमा समस्या कूटनीतिक वार्ता से समाधान ढूंढने का सरकार काम कर रही है। सरकार के प्रवक्ता शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल का कथन, नेपाल भारत सीमा के विषय पर किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं है, भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा स्पष्ट। भारत भ्रमण पर रहे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा सभापति रवि लामिछाने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीच भेंटवार्ता, और रूस ने यूक्रेन पर किया हवाई हमला, कम से कम 16 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।